गीता की शुरुआत जो है अर्जुन के मोह से शुरू होती है। जैसे ही उसको मोह हुआ, मोह मतलब डेल्यूशन, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, जैसे ही उसको रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हुई उसके साथ उसको शोक हो गया, विषाद हो गया। अच्छा, विषाद भी योग बन सकता है अगर विषाद हम गुरु के पास या किसी ज्ञानी के पास जाके कहें। अर्जुन रो रहा था तो उसने भगवान कृष्ण को कहा कि मेरा ये दुख है, मेरा क्या कर्तव्य है। अगर गुरु ना हो, भगवान श्री कृष्ण सामने ना हो, फिर क्या करें। तो तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा कहा है कि जो वेदांत की शिक्षा लेके जब गृहस्थ में जाते हैं तो उस एरिया में, आपके क्षेत्र में जो ज्ञानी है उसके पास जाओ, उससे पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान ने जब उसकी उसका दुख देखा तो उसको आत्मज्ञान दे दिया। क्यों पहले आत्मज्ञान दिया, अब आपको बताना होगा। संसार के दुख का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है, दूसरी कोई दवाई नहीं है। जब भगवान ने अर्जुन को रोते देखा तो भगवान समझ गए इसको दुख है, और दुख का कारण क्या है, अनात्मा है। एक आत्मा है, दूसरा अनात्मा है, दुख का कारण क्या है, अनात्मा का दुख कैसे जाएगा, आत्मा के ज्ञान से जाएगा। बस सीधा, बहुत साइंटिफिक है एकदम। आत्मज्ञान दे दिया, आत्मज्ञान देने के बाद में फिर व्यावहारिक ज्ञान भी दिया। आत्मज्ञान के बाद में भगवान ने फिर उसको व्यावहारिक ज्ञान दिया। क्या व्यावहारिक ज्ञान दिया, कि कर्म कैसे करें। हमें तो कर्म करना होगा, बिना कर्म के तो हम रह नहीं सकते। तो भगवान ने कहा, ऐसा ते अभितः सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम सुनो। अब तुम जो है कर्म योग के बारे में बात सुनो। तो भगवान का वहां ये कहना था कि देखो, ज्ञान योग जो मैंने पहले दिया, और अब जो है 39वें श्लोक के बाद से जो मैं कर्म योग की बात करने जा रहा हूं, ये दोनों दो मार्ग नहीं है। अर्जुन जो है ये 39 वर्ष को स्लिप कर गया, उस टाइम में वो अटेंटिव नहीं था, इसके कारण वो प्रश्न करता है। तीसरे अध्याय में शुरू में ही प्रश्न करता है कि ज्ञान और कर्म अगर दो, अगर हमारे पास योग के उपाय हैं तो आप मेरे को बार बार क्यों युद्ध करने बोलते हो। ज्ञान अगर सुपीरियर है तो हम ज्ञान मार्ग चलेंगे। तो भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है, जो कर्म योग है वही बाद में जाके ज्ञान योग बन जाता है। जो महात्मा गांधी रोड है वो
जीना
रोड, सेम रोड। ये आपको याद रखना होगा कि ज्ञान और कर्म मार्ग दो मार्ग नहीं है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट दो हैं। हम कहाँ खड़े हैं, हमारी वासना क्या है, हमारी स्थिति क्या है, उसके हिसाब से हम अपना साधना शुरू करेंगे। तो कर्म योग से हमको करना है। अर्जुन का सोचना था कि ज्ञान योग जो है कर्म योग के विरुद्ध है, ऐसा नहीं है। कर्म योग का सहायक जो है ज्ञान योग है, कर्म योग आपको ज्ञान योग का अधिकारी बनाता है। कर्म योग आपको ज्ञान योग का अधिकारी बनाता है, तो हमको तो पहले तो अधिकारी बनना है। हम बराबर आपको कहते आते हैं कि आपको केवल दो स्टेप करने हैं। स्टेप नंबर वन मन शुद्धि, कैसे होगा? बस, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। मन शुद्ध करना है, जैसे ही मन शुद्ध होगा आप जो है फिर ज्ञान के अधिकारी बन गए। ज्ञान के अधिकारी का मतलब क्या? अब आप श्रवण मनन निधि आसन करो, जो भी श्रवण करोगे उसके ऊपर में आप फिर मनन करो, मनन करके उसको आप फॉलो करो। कौन सा कर्म ज्ञान के विरुद्ध है, अब आप हमको ये बताओ। भगवान ने तो अभी कहा कर्म योग ज्ञान योग के विरुद्ध नहीं है, कर्म योग ज्ञान योग का सहायक है, कर्म योग आपको ज्ञान योग का अधिकारी बनाता है। मगर अर्जुन का विचार ऐसा है कि कर्म जो है, कर्म योग जो है वो ज्ञान योग का विरोधी है। तो कौन से कर्म जो हैं ज्ञान योग के विरोधी? हाँ, और वेरी गुड, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, ये ज्ञान के विरोधी हैं। क्यों विरोधी हैं? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन? ये वासना बढ़ाते हैं, काम्य कर्म जो है वासना बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है काम्य कर्म वासना बढ़ाती है? जब हम कोई भी कर्म अपनी खुशी के लिए करते हैं तो उसके अंदर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आती हैं। वासना मतलब क्या? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और हम जब दूसरे के लिए करते हैं, जब आप कंपनी में काम करते हो वहां लाइक्स डिसलाइक्स नहीं बनती है, जब आप भगवान के लिए करोगे फिर वहां लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होती है। और जो पुरानी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, जैसे कमती शुरू होने लगी आप ज्ञान के अधिकारी बन गए। इसलिए काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, ये दो कर्म जो हैं ये ज्ञान के विरुद्ध हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना काम के रह नहीं सकता, हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। कैसे प्रूव करोगे? हाँ, कोई अगर कहे हम तो कुछ नहीं कर रहे बैठे हैं, हम बोलेंगे आपका माइंड काम कर रहा है। आप बोले हम सुसुप्ति में हैं, डीप स्लीप में है, माइंड नहीं है। हम कहेंगे आपकी सांस चल रही है, आपका डाइजेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, कर्म हो रहा है कि नहीं शरीर में? हो रहा है। तो कर्म आपका चलता रहेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। तो कर्म योग करने के भगवान ने कई तरीके समझाए हमें। हम लोगों ने तो बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमको कर्म योग उसको कहते हैं जो अपनी खुशी के लिए किया जाए।
नहीं
नहीं, वो काम है कर्म हो गया। जो भगवान की खुशी के लिए होता है वो कर्म योग होता है। तो कर्म किसके लिए? हायर के लिए करना होगा। भगवान हमसे हायर है, जब हम हायर के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म योग हो गया। जब हम कर्म फल की आशा नहीं करते हैं, देखो हर कर्म का कर्म फल आएगा, मगर कर्म करने के समय अगर हम फल की आशा ना करें तो हमारा 100% मन काम में लगेगा। अगर काम करते करते हम ये सोचने लगे इसका फल क्या मिलेगा, इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, एक लड़का जॉइंट परीक्षा में बैठा है, जॉइंट परीक्षा यहां तो नहीं होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता क्या है, थोड़े से मार्क्स से जो है आप ऊपर नीचे चलते रहते हो। अब उस लड़के ने सोचा हमने तो 5 प्रश्न कर लिए, छठा प्रश्न है, 5 में ठीक हो गया, 5 × 16 × 5 = 80 आ गए, अब 20 चाहिए। इतना सोचने के अंदर उसका समय निकल गया थोड़ा। अब वो छठा प्रश्न जो है कंप्लीट नहीं कर पाया, हो गया खत्म। इसलिए कर्म करने के टाइम में कर्म फल की चिंता नहीं करनी है, और कर्म कैसे करना है, बिना अहंकार के करना है, बिना अहंकार के करना है। मैं करता हूं यह भी गलत भाव है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जो विमूढ़ है, केवल मूढ़ नहीं, जो विशेष मूढ़ है वो अपने आप को कर्ता कहते हैं। और कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म को पूजा के हिसाब से करना चाहिए। ये सब कर्म योग बनाने के समझाने के लिए भगवान ने ये तरीके बताए, ऐसे करो ऐसे करो, सेवा के रूप में कर्म करो। उसके बाद भगवान ने यह भी कहा, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन है। अगर आपने यज्ञ रूप से कर्म नहीं किया, अगर आपने भगवान के यज्ञ, मतलब भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ है, अगर भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं किया, भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं किया मतलब भगवान की, विष्णु की खुशी के लिए कर्म नहीं किया, तो वो क्या होगा, बंधन हो जाएगा, वो वासना बन जाएगी, वो लाइक्स डिसलाइक्स हो जाएगा, वो आपकी टेंडेंसी हो जाएगी, वो आपका ब्लूप्रिंट हो जाएगा। वो ब्लूप्रिंट आप भगवान को देते हैं कि इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से भगवान मेरे को दूसरा शरीर दे दो, भगवान आपको शरीर दे देंगे। फिर भगवान कहते हैं परस्पर भावयंत, अगर तुम देवता की पूजा करोगे तो देवता खुश होंगे, वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। कितने तरीके से भगवान हमको समझाना चाहते हैं, मगर हम फिर भी अपने लिए करते हैं। भगवान कहते हैं भावे तुम देवता के लिए करो, तुम देवताओं की खुशी के लिए करोगे, ईश्वर की खुशी के लिए करोगे, विष्णु की खुशी के लिए करोगे। अरे विष्णु क्या चुप से बैठा रहेगा, विष्णु भी तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तो इसलिए वो परस्पर जो है दोनों का ही विकास होगा। भगवान कहते हैं देखो मैं तुमको एग्जाम्पल भी देता हूं, जनकादि जनक राजा थे, उन्होंने इसी तरह से कर्म करके संसिद्धि, उनको मुक्ति मिली है। फिर भगवान कहते तुम मेरे को देखो, मैं इस सारी दुनिया का मालिक हूं, इस दुनिया से मेरे को कुछ नहीं लेना है। अगर सारी दुनिया का मैं मालिक हूं तो यहां से लेना क्या है, मेरे को कुछ नहीं लेना है। फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्यों करता हूं मैं कर्म, मैं इसलिए करता हूं कि लोग मेरे को देख के भी कर्म करें। इसलिए अर्जुन तुम श्रेष्ठ हो, तुम आइकॉन हो, तुम कर्म करोगे, तुमको कर्म करते हुए देख के सारी दुनिया भी कर्म करेगी कि हां अर्जुन कर्म कर रहा है। अब प्रश्न आता है कर्म योग करने से फल क्या मिलेगा। देखो भगवान सब बताते जाते हैं, एक एक करके सब उन्होंने बताया। कर्म योग करने का फल यह बताया कि मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, कर्मी भी जो भी आपने कर्म किए हैं, पाप पुण्य के जो कर्म किए हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल जाएगी मतलब उसको भोगने के लिए, उसको फल प्राप्ति करने के लिए आपको दूसरा शरीर नहीं लेना होगा। कितना बड़ा लाभ है कर्म योग करने का। अगर बोलते हैं हम नहीं करेंगे, ऐसा भी तो होता है, बहुत लोग नहीं करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो है विद्धि नष्टान चेत स, तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई, तुम बेकार, तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। और तुम अपनी प्रकृति के हिसाब से कर्म करोगे ही करोगे, करना ही पड़ेगा तुमको, प्रकृति तुमको अवश्य होकर कर्म करा लेगी, प्रकृति के हिसाब से तुम कर्म करते रहो। क्यों, क्योंकि गुना गुने सुवर्तन्ते, गुण जो हैं सत्व रजस तमस, ये अपने आप में वर्तन करते रहते हैं। कैसे वर्तन करते हैं, कौन प्रूफ करेगा,
मैं मरा ते तेरा
ये शरीर सत्व रजस तमस से बना हुआ है। ये टेबल सत्व रजस तमस से बना है, आपका शरीर सत्व रजस तमस से बन रहा है, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, किसका किसके वर्तन हो रहा है। पंच महाभूत का बना ये शरीर दूसरा पंच महाभूत उसको सुन रहा है, यही तो ट्रांजैक्शन हो रहा है। या ये टेबल को हम व्यवहार कर रहे हैं भी पंच महाभूत का है, ये मकान जो है वो भी पंच महाभूत का है, तो वर्तन किसके साथ हो रहा है? पंच महाभूत का, पंच महाभूत से हो रहा है। पंच महाभूत कहां से आए? त्रिगुण से आए। तो एक त्रिगुण दूसरे त्रिगुण से वर्तन कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब त्रि उसमें कॉमन है, त्रि को निकाल दो, गुना गुणेशु वर्तन्ते, गुण गुण से वर्तन कर रहे हैं। तो ऐसा जो जानता है वो फिर उनके साथ में कभी आइडेंटिफाई नहीं करता, तादात्म्य नहीं करता है। और हम सब तादात्म्य करके बैठे हुए हैं। अनात्मा का अनात्मा के साथ में वर्तन चल रहा है, ट्रांजैक्शन चल रहा है, और हम उस अनात्म वस्तु के साथ में तादात्म्य करके बैठे हैं। अब उस तादात्म्य का फल क्या होता है? बराबर दुख होता है, बराबर। क्यों दुख होता है?
दुखालय है।
क्यों दुखालय है?
पेरिशेबल है।
थिंग बिकॉज इट इज पेरिशेबल, इट इज चेंजिंग। एक दिन मरेगा ये अनात्मा, तो उस दिन क्या सुख देगा? दुख देगा। इसलिए ये अनात्मा बराबर दुख देता है। भगवान कहते हैं कि अपना स्वधर्म करो, स्वधर्म करो, मगर लोगों को परधर्म करने की बड़ी इच्छा होती है। दूसरों का काम जो है, दूसरे जो करते हैं उसको करने की बहुत इच्छा होती है। उससे क्या होता है? बोले आपका जो वासना है वो तो खत्म होगी नहीं, परधर्म की वासना और आ जाएगी। आपको डॉक्टर बनने की इच्छा है, आपके माता पिता ने आपको इंजीनियर बना दिया। अब डॉक्टर की इच्छा जो वासना खत्म हुई नहीं, और सारा जीवन आप जो है इंजीनियर के हिसाब से काम करते रहे, अब इंजीनियर की वासना भी जुड़ गई। तो डॉक्टर की वासना प्लस इंजीनियर की वासना, जब इस लोक से आप चलोगे तब आपकी वासना के कैपिटल और बढ़ गया। बस अंत में भगवान कहते हैं फाइनल एडवाइस, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जही शत्रु, ए अर्जुन तुम अपने इस शत्रु, इस काम को जो, इस डिजायर को जो है उसको खत्म करो, खत्म कर डालो। अब चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो चौथे अध्याय में मजे की बात है कि ये अध्याय में कोई प्रश्न से शुरू नहीं हो रहा है, है? दूसरा अध्याय में प्रश्न था अर्जुन का कि मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मेरे को बताओ, एक प्रश्न था, उसका उत्तर भगवान ने दिया। तीसरे अध्याय में वो कहता है कि भगवान अगर कर्म योग और ज्ञान योग दो आप मार्ग एक साथ बता दिए, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, कंफ्यूज हो गया हूं, दोनों में से एक बोलो कौन सा अच्छा है मेरे लिए, ये बताओ। वहां भी अर्जुन का प्रश्न था। अब चौथे अध्याय के शुरू में कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देखो ज्ञान योग कर्म योग के तुम्हारी जो चिंता थी कि ये दो मार्ग हैं, ये दो मार्ग नहीं है, ये एक ही मार्ग है। और हमें क्या करना है? हमें अल्टीमेटली ज्ञान में निष्ठ होना है। ज्ञान में निष्ठ होने से ही संसार के कर्तव्य कर्म खत्म हो गए। जब तक आप ज्ञान की निष्ठा नहीं प्राप्त होगी आपके कर्तव्य कर्म खत्म नहीं होंगे, कर्तव्य कर्म आपके चलते रहेंगे। तो संसार से अगर छूटना है तो आपको क्या करना है? संसार से छूटने के लिए आपको कर्मयोग करना है। पहले कर्मयोग करेंगे, इससे क्या होगा? मन शुद्ध होगा। जैसे ही मन शुद्ध होगा आपके अंदर विचार आएगा मैं कौन हूं, उसको जानने के लिए फिर आपको विवेक चाहिए। फिर आप सत्संग में जाओगे, सत्संग में आपको आत्मा अनात्मा बोलेंगे, बोले इन दोनों में विवेक करते जाओ, उनकी जो है आत्मा और अनात्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझो, तब आपको पता लगेगा कि अनात्मा में क्या क्या चीजें हैं, इसका नेचर क्या है, आत्मा का नेचर क्या है। जब अनात्मा का नेचर आपको पता लग जाएगा कि ये बराबर दुख देने वाला है और आत्मा बराबर सुख देने वाला है, तो आप किधर जाओगे? अनात्मा की तरफ या आत्मा की तरफ? आत्मा की तरफ जाओगे। तो ये आत्मा की तरफ जो जाना है वो अनात्मा से वैराग्य हो गया। देखो ये वैराग्य टिकेगा विवेक किया हुआ जो वैराग्य है वो वैराग्य टिकता है। अगर आप ऐसा वैराग्य, लो कल से हम गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, लो ये वैराग्य नहीं टिकने वाला है, 10 दिन के बाद में फिर आप गुलाब जामुन खा बैठोगे। मगर अगर आप ये विवेक कर लिया कि ये चीज हमको दुख देती है, ये सर्वदा दुख देगी, हमें कभी नित्य तृप्त नहीं करेगी ये, और नित्य तृप्त करने वाली, नित्य सुख देने वाली चीज भी उपलब्ध है, आत्मा है, मेरे पास है, तब जो आपका टर्निंग होता है अनात्मा से तादात्म्य छोड़ के जो आत्मा की तरफ आते हैं उसको वैराग्य कहते हैं। अब आप जो अनात्म वस्तु को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप अपने घर के मकान को या अपनी दुकान को या अपने गाड़ी को, फिर आस्ते आस्ते अपने बच्चों को, फिर अपने शरीर को, बहुत मुश्किल है इससे तादात्म्य छुड़ाना। मकान का, गाड़ी का, धन का, पैसे का तादात्म्य आसानी से छूट जाएगा। मगर बच्चों का वो भी छूट जाता है, मगर शरीर का तादात्म्य बहुत मुश्किल होती है। मगर जिस दिन ये विवेक आपने कर लिया कि ये शरीर भी अनात्मा है, ये भी बदलता है, रोज हर क्षण बदलता है, जब आपने विवेक कर लिया तब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ भाई ये तो इसका यही है, इसका नेचर क्या है, अस्ति जायते वर्तते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, बस ये अपना धर्म पालन करेगा, कभी उल्टा नहीं जाएगा ये, तब हम उसको मान लेते हैं। तो जैसे विवेक से वैराग्य हुआ, अब आप जो है आत्मा को जानना चाहते हो, तो आत्मा को जानने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, जहां पर आत्मज्ञान दिया जाता है, जहां आत्मज्ञान दिया जाता है वहां जाके आपको श्रवण करना होगा, श्रवण के बाद में उसको मनन करना होगा, मनन के बाद में क्यों मनन करना होगा, हमारे पास बुद्धि है और वो बुद्धि जो है बराबर विचरण करती है अनात्मा में, वो अनात्म बुद्धि बराबर क्वेश्चन लगाएगी, हर दम क्वेश्चन लगा देगी, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, आत्मा है ही नहीं, है तो दिखाई पड़ती है, कहां दिखाई पड़ती है, बराबर क्वेश्चन लगाएगी। फिर आप बार बार मनन करोगे, मनन करने के बाद में फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं आत्मा वस्तु है, मेरे पास ही है, फिर मन जाएगा कि नहीं हमको उसका अनुभव करना है, तो अनुभव के लिए आपको ध्यान में जाना है, ध्यान में जाके आप अनुभव कर लो, एक बार ही करना है। गुरुदेव कहते थे इलेक्ट्रिसिटी योगा योग, कितनी बार करना है, 1 electric shock इज सफिशियंट फॉर योर होल लाइफ, यू डोंट नीड अनदर shock, चाहिए क्या आपको, नहीं। उसी तरह से आत्मा का योगा योग, एक बार अगर आपको एक्सपीरियंस हो, आत्मा है मेरे पास है बस, फिर तो बार बार नहीं देखना पड़ता ना, आपके बैंक में पैसे हैं, एक बार बैंक स्टेटमेंट देख लिया, आप क्या सवेरे शाम खाली देखते ही रहते हो, एक बार का। तो वेद का मतलब क्या है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान पाने के लिए 2 साधना हैं, केवल 2 साधना है, एक है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा है
निवृत्ति
मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है,
कर्मयोग।
कर्मयोग है कि जब तक हमारे अंदर वासना रहेगी तब तक हमारे में प्रवृत्ति रहेगी, वो काम करने की प्रवृत्ति रहेगी, उस वासना को खत्म करने के लिए हमको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर यही रहेगा, सॉफ्टवेयर चेंज करना है। क्या चेंज करना है,
भगवान के कुछ के लिए
काम करेंगे, कौन सा काम, जो कर रहे हैं। गीता में, उपनिषद में कोई नया काम नहीं बताया है कि आपको 108 माला रोज ऐसे करनी है, ऐसा नहीं कहा कि इस भगवान की पूजा करनी है, ये यज्ञ करना है, ऐसा नहीं कहा। आप जो करते हो वही काम करोगे, मगर किसकी खुशी के लिए, बस इतना करना, यही सॉफ्टवेयर फिट करना है। तो ये है प्रवृत्ति मार्ग। करते 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 वासना जब क्षय होगी तो उसके बाद आप निवृत्ति मार्ग में आ गए। निवृत्ति मार्ग का मतलब क्या हुआ? श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये निवृत्ति। ये नहीं कि निवृत्ति का मतलब हो गया बस हो गया, हमारी वासना खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहे चुप से। नहीं, अभी भी काम है आपका। क्या काम है? अब श्रवण मनन निधि ध्यासन करना है। तो प्रवृत्ति मार्ग में दो चीज आ गई, एक तो कर्म करना है कर्मयोग की तरह से, दूसरा उपासना करना है, भक्ति करनी है। और निवृत्ति मार्ग में क्या आया? ज्ञान आ गया, तो आपकी साधना कंप्लीट ही होगी। तो वेद का मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान पाने के दो साधन, साधन नंबर वन प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में कर्मयोग एंड उपासना, ये कर लो, उसके बाद में आप निवृत्ति मार्ग में चले गए। निवृत्ति मार्ग में क्या करना है? खत्म, साधना खत्म हो गई। ठीक है, अब यहां पर भगवान कहते हैं कर्म योग जिसका उपाय है ऐसा जो यह संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा योग पूर्वक दो अध्याय में दूसरे और तीसरे में कहा गया है, जिसमें कि वेद का प्रवृत्ति धर्म रूप और निवृत्ति धर्म रूप दोनों प्रकार का संपूर्ण तात्पर्य आ जाता है। तो पिछले दो अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या देखा? प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग तो नहीं आ गया। प्रवृत्ति मार्ग कौन सा था? कर्मयोग। कर्मयोग कहां से शुरू हुआ? दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 39 से शुरू हुआ। तीसरा अध्याय पूरा कर्मयोग था। उसके पहले क्या था? ज्ञान योग था। तो ये दूसरे और तीसरे अध्याय में प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग की पूरी चर्चा हो चुकी है। सही मानो तो गीता खत्म हो चुकी है। अब बाकी जितने भी अध्याय हैं वो क्या हैं? आगे सारी गीता में भगवान को योग शब्द से यही ज्ञान योग विवेचित करना है। अब योग की व्याख्या करनी है। कैसे हम कर्म योग से ज्ञान योग तक पहुंचेंगे, कैसे कैसे हमारा विकास होगा, उसकी चर्चा आस्ते 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 आएगी। अब भगवान जो है चौथे अध्याय में वंश परंपरा की चर्चा करने वाले हैं। भगवान वंश परंपरा कथन से उस ज्ञान निष्ठा रूप योग की स्तुति करते हैं। तो कर्म योग से हमें ज्ञान एवं ज्ञान निष्ठा के अंदर में हमको स्थित होना है। कर्म योग से ज्ञान पाना है और उस ज्ञान में अबाइड करना है। ज्ञान निष्ठा उसको कहते हैं। एक तो ज्ञान होना है और एक को ज्ञान के अंदर स्थित होना है, ये दो चीजें हैं। तो ज्ञान निष्ठा हमको लेनी है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग के अंदर कर्तव्य कर्म करना है, निवृत्ति मार्ग में कर्तव्य कर्म नहीं करना है। निवृत्ति मार्ग में श्रवण मनन निधि ध्यासन करना है। ऐसे करते करते हम शिखर पर पहुंच जाएंगे, यही बात भगवान अब गीता में कहने वाले हैं, चौथे अध्याय में और आगे भी कहने वाले हैं। तो आपको हम बता दें कि चौथे अध्याय का नाम जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ज्ञान कर्म संन्यास योग इसका नाम है। इसमें 42 श्लोक है, 42। जैसा बताया भगवान ने, अगर उसका हम अनुकरण करेंगे, उसको अगर हम फॉलो करेंगे, तो कैसे हमारी प्रोग्रेस होगी, अब ये भगवान आस्ते आस्ते बताने जा रहे हैं। चौथे अध्याय में 12 यज्ञ की चर्चा आएगी। चौथे अध्याय में 12 यज्ञ की चर्चा आएगी। 12 यज्ञ अगर हम करने लगे तो उसके अंदर फिर आस्ते आस्ते हमें ज्ञान मिलेगा। जैसे ही ज्ञान हमें मिलेगा, उसी अनुपात में हमारा वैराग्य आता जाएगा। हमने पहले ही देखा है, जब हमने विवेक किया वैराग्य आना शुरू हो गया। वैराग्य किससे? आत्मा से कि अनात्मा से? अनात्मा से। अभी तो हमको वैराग्य आत्मा से है। तो जैसे जैसे हमको ज्ञान होना शुरू होगा, जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, जैसे हम पूरब की दिशा की तरफ चलते हैं, पश्चिम उतना दूर होता जाता है, उसी तरह से जैसे ही हमने यू टर्न लिया, यू टर्न मतलब आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां अभी बहिर्मुखी है, आत्मा भीतर है, हम 24 घंटे के अंदर 16 घंटे केवल बाहर देखते रहते हैं, बाहर से व्यवहार करते हैं। जिस दिन आपने उसको रोक के अपने मन को भीतर की तरफ मोड़ लिया, उसको यू टर्न कहते हैं, तो वैराग्य आएगा। इसके बारे में चर्चा है, एवं साधक धीरे धीरे ध्यान का अधिकारी होता है। तो चौथे अध्याय में ज्ञान यज्ञ की चर्चा होगी, यज्ञ के बाद में फिर पांचवें अध्याय में कैसे वैराग्य बढ़ता है, बढ़ने के बाद में जब आप अधिकारी बन जाओगे तो छठे अध्याय में आपको ध्यान की विधि बताएंगे, कैसे ध्यान करके आप पालोगे। ठीक है, मगर सारी दुनिया ध्यान पहले करना चाहती है। भगवान बोलते हैं पांच अध्याय पहले खत्म करो, पढ़ो, उसके बाद ध्यान में बैठो। बिना उसके किए क्या होगा ध्यान? आप ध्यान में बैठोगे, ध्यान किसका होगा? आत्मा की, अनात्मा का? देखो सबको तजुर्बा है, सब ध्यान करते हैं, सबको तजुर्बा है क्या होता है ध्यान के अंदर। अनात्मा का ध्यान होगा, जैसे ही आंख बंद की, आज हमको क्या क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट बन जाती है तुरंत, एक के बाद एक, एक के बाद एक शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी रूपरेखा क्या है? चलो आपको एक चीज और बता देते हैं कि पहले 10 श्लोक के अंदर भगवान जगत गुरु ज्ञान की बात करेंगे, ज्ञान की परंपरा बताएंगे, किसने ज्ञान दिया पहले ये भी बताएंगे, ज्ञान कैसे शुरू हुआ ये बताएंगे। 11 से 18 तक बताएंगे कर्म एवं आत्मा का संबंध। हम जो कर्म करते हैं, बिना आत्मा के कर्म नहीं होगा, इसका संबंध बताएंगे। 19 से 24 तक भगवान बताएंगे ज्ञानी के कर्म बंधनकारी नहीं होते हैं, ज्ञानी भी कर्म करता है। अगर मान लो आप अभी ज्ञानी बन गए इस मुहूर्त से, तो इसका यह मतलब थोड़ी ना होगा आप मर जाओगे, आप तो जीवित रहोगे और शरीर आपका कर्म करेगा, आप सांस भी लोगे, डाइजेशन भी होगा, सब कुछ होगा। मगर ज्ञानी जो कर्म करता है उसके काम में कर्म नहीं होते हैं, वो अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करता है, इसलिए उसके कर्म उसको बांधते नहीं हैं। 25 से लेकर 30 तक जो है 12 यज्ञ की बात की गई है, और 31 से 37 तक उन्होंने कहा सारे यज्ञों से जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी, और 35 से 42 में भगवान सलाह देते हैं कि ज्ञान ले लो। अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम यह ज्ञान ले लो। अच्छा, 1 टॉपिक जो है वो भगवान कृष्ण का है, जगत गुरु। केवल पूर्ण ज्ञानी केवल आपको अध्यात्म ज्ञान दे सकता है, जिसके पास में पूर्ण ज्ञान है वही दे सकता है। वेरी सिंपल, एक क्लास 12 स्टैंडर्ड का पास किया हुआ लड़का आपको कितनी गणित पढ़ा सकता है? जितना उसका ज्ञान है उतना ही पढ़ाएगा। उसी तरह से जितना वेदांत का ज्ञान जिसको है उतना ही दे पाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाएगा। मगर पूर्ण ज्ञान आपको जो है अध्यात्म ज्ञान ही दे सकता है। और संत क्या करते हैं? संत का काम यह है कि धर्म की संस्थापना करना है और अधर्म को हटाना है। कर्म एवं आत्मा का संबंध क्या है? कर्म बिना आत्मा की उपस्थिति के नहीं हो सकता। एक मृत देह कोई कर्म नहीं, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसमें आत्मा का संयोग नहीं है। उसमें से जहां पर आत्मा का रिफ्लेक्शन होता है वो चीज वहां से निकल के चली गई है, इसलिए मृत व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता है। किसी भी कर्म से आत्मा प्रभावित नहीं हो सकती है।
रेड रोज
लाल फूल देख के मेरी आंख लाल नहीं होती, होती है क्या? नहीं होती है। हमारी अगर आंख में कोई कमजोरी हो तो आंख को देखने वाला मन क्या कमजोर हो जाता है? अगर हमारे आंख में कैटरक्ट है, आंख धुंधला देख रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आंख को देखने वाला मन जो है वो धुंधला हो गया। मन बताता है आंख धुंधली हो गई, दिखाई नहीं पड़ता है। मन को प्रकाशित करना वाला, मन के अंदर अगर अच्छे बुरे विचार अगर आए तो उसको प्रकाशित करने वाला जो तत्व है आत्मा, वो प्रभावित नहीं होता है। तो अगर कोई आपको कहे कि आत्मा जो है कर्म से प्रभावित नहीं होती है, प्रूफ करो, तो आप सीधे प्रेमल जी के पास आ जाना, ही विल राइट ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर यू। ऐसे होता है। अच्छा, आत्मा किसी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। देखो ये आत्मा के गुण है सब। आत्मा कभी किसी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। गीता क्लास में आना है, आत्मा बोलेंगे चलो, नहीं आना है मत चलो, हम पब चलेंगे चलो, पार्टी में जाना है चलो पार्टी चलो। आत्मा नहीं कहेगा कि आपको गीता क्लास जाना चाहिए, पार्टी नहीं जाना चाहिए अभी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। आत्मा कर्मफल से भी प्रभावित नहीं होता। कर्मफल अच्छा है या खराब है कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा को। ज्ञानी के कर्म बंधनकारी नहीं है, टॉपिक नंबर 3, क्योंकि उसकी कामना नहीं है। ज्ञानी क्या है, वो तो ब्रह्म है। ज्ञानी अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म जो है क्या है, अकर्ता है। ब्रह्म कोई काम नहीं करता, इसलिए कोई बंधन का सवाल ही नहीं उठता है। 12 यज्ञ हैं। आगे आगे के जमाने में हम लोग फायर रिचुअल करते थे, अग्नि के अंदर ऑब्लेशंस देते थे, आहुति देते थे। अभी भगवान ने गीता के अंदर कहा हमारे जो कर्म है उनको यज्ञ बनाना है। क्या कर्म है? 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों को लेकर आती है। ओके, किसको देती है? मन बुद्धि को देती है। मन बुद्धि उस पर विचार करते हैं, विचार करके फिर 5 कर्मेंद्रियां से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सो परसेप्शन, उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, देन वी रिस्पॉन्ड। इसको भगवान ने 12 भाग में भाग किया है, 12 यज्ञ बना दिए इसके ऊपर में, किसकी किस में आहुति डालनी है देखेंगे, वो आएगा, सब आएगा। अभी आपको रूपरेखा खाली देते हैं, आउटलाइन देते हैं। अच्छा, सारे यज्ञों से आपको ज्ञान होगा। इन यज्ञ करने से, जैसे ही हम वो यज्ञ करेंगे तो उसमें वासना क्षय होगी, जैसे ही वासना क्षय होगी आपको ज्ञान की सुविधा मिलेगी, या आप ज्ञान के अधिकारी होंगे। ज्ञान के अधिकारी होने का मतलब क्या है? ज्ञान के अधिकारी होने का मतलब है कि आप जो है गुरु को अट्रैक्ट करोगे। देखो बहुत सूक्ष्म बात है, आप जब अधिकारी होगे तो आप जो है गुरु को अट्रैक्ट करोगे। जैसे एक फूल जब विकसित होता है तब भंवरा आता है, राइट? जब फूल के अंदर सुगंध आई तब भंवरा आता है। उसी तरह से अगर कोई सुगंधित व्यक्ति, कोई उत्तम अधिकारी अगर कहीं पर होता है तो गुरु इज अट्रैक्टेड। एंड द क्लासिक एग्जाम्पल लास्ट सेंचुरी में ठाकुर रामकृष्ण थे, पूर्व भारत के अंदर कलकत्ते में वहां बैठे हुए थे। काली के भक्त थे, मदर काली से उनकी बातचीत होती थी, मगर ज्ञान नहीं था। तो तोता फ्री ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ इंडिया केम वॉकिंग, रेलगाड़ी नहीं थी, अट्रैक्टेड। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि गुरु की सप्लाई जो है वो भगवान कंट्रोल करते हैं। कौन कहां जाएगा किसी को पता नहीं है। अच्छा, भगवान ने सलाह दी कि आप जो है ज्ञान ले लो। क्यों ज्ञान ले लें हम? बोले ज्ञान लेने से आपको शांति मिलेगी। अभी क्या है? बोले अभी अशांत हो, आपका मन जो है अभी विक्षिप्त है, एजिटेटेड है। ज्ञान मिलने से आपको शांति मिल जाएगी और आपको लेना भी चाहिए। और ये ज्ञान कैसा होना चाहिए? संशय रहित होना चाहिए, एकदम संशय रहित ज्ञान हो। तो उन्हें इस जीवन में अथवा दूसरे जीवन में नित्य सुख जो नहीं करते हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान नहीं लिया, तो उनको क्या होगा? सुख नहीं मिलेगा। सुख का मतलब शांति, शांति नहीं मिलेगी तो क्या होगा? अशांत है वो। जिसका मन शांत नहीं है वो क्या है? अशांत है। अगर हमको सुख मिल गया तो मन क्या होगा? शांत होगा। अगर हमारा मन शांत नहीं है तो अशांत है। अज्ञानी कितने हैं? वो सबके सब अशांत हैं। उनको यहां भी सुख नहीं है और इसके बाद में भी सुख नहीं मिलेगा। ये भी साइंस है, साइंटिफिक एकदम। उनको बाद में भी सुख नहीं मिलेगा। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम जो है ये ज्ञान को ले लो, इस ज्ञान को तुम ले लो अर्जुन, मैं ये चाहता हूं कि इसी जीवन के अंदर तुम इसको पालो। अब पहला वर्ष में हम लोग आते हैं।
अथ चतुर्थोऽध्यायः।
अथ चतुर्थोऽध्यायः।
श्री भगवान उवाच।
श्री भगवान उवाच।
इमं विवश्वते योगम्।
इमं विवश्वते योगम्।
प्रोक्तवानहमव्ययम्।
प्रोक्तवानहमव्ययम्।
विवस्वान् मनवे प्राह।
विवस्वान् मनवे प्राह।
मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत।
मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत।
इमं विवस्वते योगम्। प्रोक्तवानहमव्ययम्। विवस्वान् मनवे प्राह।
इमं विवस्वते, इमं विश्वते, विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम्। ये जो योग है, कौन सा योग? ये जो कर्म योग, जो अभी हमने तीसरे अध्याय में तुमको पढ़ाया, ये हमने किसको दिया? ये हमने पहले, सबसे पहले विवस्वान सूर्य को पहले दिया। अच्छा, ये योग कैसा है? अव्ययम्, कभी नाश नहीं होने वाला है। प्रोक्तवान, मैंने अच्छी तरह से उसको, सूर्य को समझाया, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और सूर्य उत्तम अधिकारी है। क्यों उत्तम अधिकारी है? आज तक कर रहा है। सूर्य कर्मयोग आज तक कर रहा है। कैसे कर रहा है? 24 घंटा 365 दिन। हम 8 घंटा काम करते हैं, हम थक जाते हैं, मगर सूर्य थकता नहीं है। अब आपको लोगों को मालूम होगा कि सूर्य का उदय और अस्त नहीं होता है। उदय अस्त नहीं है सूर्य का। सूर्य जो है 24 घंटे 365 दिन अपना कर्म करता है। मैंने दिया का मतलब क्या है? भगवान क्रेडिट देते हैं कि आई हैव गिवन। अहम क्रेडिट लेने का मतलब क्या है? क्रेडिट लेने का मतलब है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैंने जो सिखाया है कर्म योग से, अगर कुछ गलत होगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने ये ज्ञान विवस्वान को पहले दिया है। अव्ययम, अव्ययम क्या है? एडजेक्टिव टू योग, कर्म योग का एडजेक्टिव है। बोले ये योग जो है अव्यय है, इम्पेरिसेबल है। विवस्वान का सन है वैवस्वत। विवस्वान का लड़का कौन है? वैवस्वत। वैवस्वत क्या है? हम लोग संकल्प लेते हैं, अभी कौन सा चल रहा है? वैवस्वत चल रहा है ना। ब्रह्मा के एक दिन के अंदर 14 मनु आते हैं। अभी किस मनु का शासन चल रहा है? सातवां मनु, उसका नाम वैवस्वत है। हम लोग संपर्क जब करते हैं ना, तब देखो पंडित तो बोलते हैं वैवस्वत। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने सूर्य को दिया, सूर्य जो है कर्मयोगी है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, अपना काम कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ? विवस्वान मनवे प्राह, सूर्य देवता ने इस राजा मनु को बताया। देखो, राजा मनु को बताया ज्ञान को शेयर करना चाहिए। ज्ञान को शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। प्रदीप के साथ में प्रदीप जलाते जाओगे तो जितने प्रदीप जलाओगे उतना प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो इसको बांटना चाहिए। मनु इच्छ्वाकवे अब्रवीत, मनु ने इसको इच्छ्वाकु को बताया। देखो, ज्ञान की अब यहां परंपरा बता रहे हैं, कैसे ज्ञान का शुरू हुआ। सबसे पहले किस भगवान ने, भगवान कौन से भगवान? कृष्ण भगवान, जो अर्जुन के सामने खड़े हैं, जिनकी उम्र 70-72 साल है, वो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया। आप विश्वास करोगे? अर्जुन के सामने जो श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं, जिनकी उम्र और अर्जुन की उम्र मोर और लेस 70-72 साल है, वो अपने शिष्य से कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, और सूर्य ने फिर मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये परंपरा चली। तो देखो, सबका प्रारंभ जो है, ज्ञान का प्रारंभ बराबर भगवान से होता है। एक चीज ये याद रखना, कभी भी ज्ञान जीव से शुरू नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि जीव के पहले भगवान है। जीव जब नहीं था, ये जब कॉस्मोस नहीं था, ये जब जगत नहीं था, तब भी भगवान थे, तब भी ब्रह्म था, ब्रह्म है और ब्रह्म रहेगा। ये जगत अभी है, प्रलय के बाद में नहीं रहेगा, मगर ब्रह्म रहेगा। हम लोग कहते हैं ना, सदाशिव समारंभ शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परम। सदा शिव समारंभ, शिव से शुरू हुआ। भागवत के अंदर कैसा आता है आप बताइए प्रेमल जी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किसको ज्ञान दिया? देखो, ब्रह्मा से शुरू होता है,
नारद को।
ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को, ब्रह्मा को किसने दिया? नारायण ने दिया। कितना दिया? चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक के अंदर सारी भागवत। अभी भागवत हम लोग 18,000 श्लोक पढ़ते हैं। जब नारायण ने ब्रह्मा को दिया 4 श्लोक, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने किसको दिया? वेद व्यास को दिया। वेद व्यास ने किसको दिया? सुखदेव जी को दिया। सुखदेव ने किसको दिया? परीक्षित को दिया। जो अभी हम लोग सुनते हैं भागवत, वो परीक्षित को दिया हुआ ज्ञान हमको सुनाई पड़ता है, वही हम पढ़ते हैं, परीक्षित को दिया। अच्छा, भगवान ने जो है ये ज्ञान क्षत्रियों को दिया। सूर्य देवता, मनु, इक्ष्वाकु सब क्षत्रिय हैं। इक्ष्वाकु सूर्यवंशी हैं, उस इक्ष्वाकु वंश में ही राम का जन्म हुआ बाद में। वाल्मीकि रामायण में आता है, इक्ष्वाकु वंश प्रभव रामा, इसी इक्ष्वाकु वंश के अंदर राम का जन्म हुआ। तो पहले राजा मरने पर क्या प्रथा थी पता है? पहले राजा मरने पर एक प्रथा थी कि हाथी एक माला लेके शहर में जाएगा, जिसके गले में माला डाल देगा वो राजा हो जाएगा। बहुत पुरानी कथा है ये। उस टाइम में ऐसे राजा चूज किए जाते थे। सो पहला भगवान का शिष्य है सूर्य देवता। ऋग्वेद में आता है, स्वस्ति पंथा अनुचरेण सूर्य चंद्र मसादेव। ऋग्वेद कहता है कि हमको सूर्य और चंद्र जैसे काम कर रहे हैं ना, वैसे करना चाहिए। सूर्य चंद्र कैसे काम कर रहे हैं? कर्म योग कर रहे हैं। देखो, वेद भी हमको ऐसा ही करने को कहता है। तो यह योग कैसा है? बोले अव्यय है। अव्यय का मतलब क्या है? दो चीज है, फलत्वात। एक तो फल इसका जो है वो अव्यय है। एक बार अगर आप मुक्त हो गए तो मुक्त, फिर आप बोलोगे कि नहीं, हमको अमेरिका में फिर ग्रीन कार्ड लेना है, नहीं मिलेगा, नो, हम नहीं आना चाहते और अमेरिका, जन्म ही नहीं होगा। तो आत्मा के सम्यक दर्शन से ही मोक्ष हो जाता है। जैसे ही आप 6 अध्याय के अंदर आत्मा का दर्शन कर लोगे एक बार, तो दर्शन करने का मतलब क्या हुआ आपको समझ में आएगा? अरे मैं ही तो आत्मा हूं, मैं ये शरीर थोड़े ना हूं, मैं तो आत्मा हूं। जैसे ही आत्मा का दर्शन हो गया, आपको मुक्ति हो गई। क्या मुक्ति हो गई? जन्म नहीं। क्यों नहीं जन्म है? क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता, ब्रह्मन का जन्म नहीं होता, इसलिए आपका पुनर्जन्म। देखो, ये सब प्रश्न आपको स्टडी क्लास में लोग पूछेंगे, आपको जो बताना होगा क्यों नहीं होता है, ऐसे इसलिए नहीं होता है। अच्छा, दूसरा फिर यहां पर बताते हैं कि आपका ज्ञान अविनाशी है, किसी भी ज्ञान का नाश नहीं होता। आपने एक बार 2+2=4 सीख लिया, आप चेष्टा करो भूलने की, नहीं होगा। जिस जगह, जिस पुस्तक से आपने 2+2=4 सीखा है, उस पुस्तक को जला दो, तो ज्ञान का नाश हो जाएगा क्या? नहीं होता है। तो ये ज्ञान जो है अविनाशी है। देखो 5000 वर्ष के बाद भी जो है ये ज्ञान अभी भी है। एक जमाना था, लोग कहते हैं कि वो जो है कर्कट की बीमारी का इलाज था, कर्कट की बीमारी कैंसर की बीमारी का इलाज था, मगर हमारे भारत से सब ले जाके चोरी करके उन्होंने सब लाइब्रेरी जाके जला दी, खत्म हो गया, पता नहीं लगता। मगर ये ज्ञान 5000 साल के बाद भी चला आ रहा है, आत्मज्ञान आज भी आपको मिल रहा है। क्षत्रियों को क्यों दिया, प्रश्न आता है, ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया भगवान ने, क्यों सूर्य देव को दिया, मनु इच्छुआकु सब क्षत्रिय हैं, क्योंकि वो पालन करने वाले हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो बलवान हैं, इसलिए वो ज्ञान की रक्षा कर सकेंगे, इसलिए भगवान ने उनको दिया। फिर क्षत्रियों ने क्या किया, क्षत्रियों ने रक्षा की, मंदिर बनवाए, और ब्राह्मणों ने जाके कथा करके उसको जो है बढ़ाना शुरू किया, कथा के रूप में ये फिर चलता गया। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम क्षत्रिय हो मगर यह ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है, यह परंपरा ठीक जो है चल रही थी मगर तुम क्षत्रिय हो, तुम राज्य कुल में पैदा भी हो, तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए ये प्रथा कहीं पर कट गई, ये परंपरा जो चली आ रही थी सूर्य के बाद में मनु, मनु के बाद इच्छुआकु, इच्छुआकु के अंदर पे राम, ये सूर्य वंश चला आ रहा था, आते आते ये कहीं पर जाके रुक गया। अच्छा, तो भगवान कहते हैं रुक गया तो कैसे क्या हुआ, दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं।
एवं परंपरा प्राप्तम,
एवं परंपरा प्राप्तम,
इमं राजर्षयो विदुः,
इमं राजर्षयो विदुः,
सकाले नेह महता,
सकाले नेह महता,
योगो नष्ट परंतप,
योगो नष्ट परंतप,
एवं परंपरा प्राप्तम, इमं राजर्षयो विदुः, सकाले नेह महता, योगो नष्ट परंतप,
एवं परंपरा प्राप्तम, इमं राजर्षयो विदुः। तो ये क्षत्रिय परंपरा ठीक चल रही थी, एक के बाद एक आ रहा था, मगर कहीं पर जाके ये रुक गया। तो एक जो चीज ये हमको यहां समझनी है कि ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में लेना है। नंबर वन, जहां भी आप जाओ ज्ञान लेने के लिए, उसको देखो कि गुरु शिष्य परंपरा में है कि नहीं। सेल्फ मेड बाबा ना हो। अभी इंडिया में बहुत ऐसे सेल्फ मेड बाबा हैं जिनके गुरु का कोई पता नहीं है। तो एक तो गुरु शिष्य परंपरा में हो। राज ऋषि मतलब राजा और ऋषि, ऋषि माने ज्ञानी। अच्छा, खुद पढ़ने से होगा, गुरु शिष्य परंपरा में आना होगा तभी आपको ज्ञान होगा। सर काले नहीं है महता योगो नष्ट परंतप, मगर कुछ काल के बाद में ये नष्ट हो गया। जिनके पास था वो राज ऋषि थे, वो देते भी थे, मगर कुछ दिन के बाद में ये खत्म हो गया। तो राजा क्षत्रिय, ऋषि ज्ञानी, ये आइडियल कॉम्बिनेशन है, ज्ञानी एंड क्षत्रिय। ऋषि किसको कहते हैं, ऋषि है मंत्र द्रष्टा, मगर राज ऋषि मंत्र द्रष्टा नहीं है। ऋषि की अगर डिफिनेशन हम देखें शास्त्र में तो ऋषि है मंत्र द्रष्टा, मंत्र को वो देखने वाले हैं, उनको ध्यान में मंत्र मिले हैं। ऋषि है तत्व द्रष्टा, ऋषि लोग तत्व को देखते हैं, अनुभव करते हैं। जानातीति ऋषि है, जो जानते हैं वो ऋषि हैं। तो ये चीजें जो हैं ये साधारण व्यक्ति को नहीं अवेलेबल है, उसको गुरु शिष्य परंपरा में जाके इसको प्राप्त करना है। तो ऋषि कितने किस्म के होते हैं, तो हम लोग को नजर में आएगा एक होते हैं ब्रह्म ऋषि, जैसे वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि थे, देवर्षि, देवर्षि नारद थे, राज ऋषि जैसे राज ऋषि लोग हैं राजा, और साथ में जो तत्व को जानते हैं राज ऋषि हैं, महर्षि, ये चीजें हम लोग तीन चार टाइटल हम लोग जो है याद करते हैं। अच्छा, ये ज्ञान नष्ट हो गया, भगवान आपने अभी पिछले श्लोक में कहा था ना ये ज्ञान अव्यय है, इम्पेरिशेबल है, ये कैसे हुआ आपने सेकंड अभी दूसरे श्लोक में यह बोलते हो नष्ट हो गया, ये क्या बात हुई? तो यहां पर कहते हैं नष्ट माने अदर्शनगत, अदर्शनगत मतलब दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे एक टॉरेंशियल नदी है बरसात में बहुत जबरदस्त नजर आती है, मगर जब सूखा पड़ता है तो रेत होती है नदी का जो है बहुत पतली धारा नजर आती है, नहीं भी आती है, मगर थोड़ा सा बालू हटाओ तो उसके अंदर नीचे पानी नजर आता है, अदर्शनार्थ नदी दर्शन नहीं हो रहा है मगर नदी है। उसी तरह से यह ज्ञान भी जो है पतला हो गया, अदर्शन हो गया, दिखाई नहीं पड़ता है, जो चीजें का डिमांड नहीं होती है वो अदर्शन हो जाती है, जिस चीज की डिमांड नहीं हो वो अदर्शन हो जाती है। अभी क्लासिक एग्जांपल है हॉथर्न मॉल के अंदर, हाँ, सीयर्स अदर्शन हो गया और क्या है वो, क्या कार्लसन अदर्शन हो गया, कोई कहता है मेसी होने वाला है अदर्शन, किसी ने हमको अभी कल परसों बताया कि मेसी अदर्शन होने वाला है, अच्छा हो जाए ठीक है। तो देखो कभी शिष्य नहीं मिलते, गुरु है मगर शिष्य नहीं मिलता है, शिष्य है गुरु नहीं मिलता है, देखो गड़बड़ होता है, अदर्शन हो जाता है। कभी रिचुअल के लिए पंडित नहीं मिलते, हमको पूजा करानी है मगर पंडित नॉट अवेलेबल, जितने पंडित हैं सब व्यस्त हैं। जब सामान बहुत ज्यादा चलता है ना तो दुकानदार उसको सामने रखता है, और जो मतलब सामान नहीं चलता है वो पीछे रैक में होता है। अब आप किसी भी अब बार्न्स नोबल्स में जाओ, उसको पूछो हमको उपनिषद की किताब चाहिए, पहले तो मिलेगी, अगर होगी भी तो कहीं पीछे रैक में कहीं पर रखा होगा, वो खोज के निकाल के देखा बोले ये दो, चलता नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। आप अगर वैदिक मैथ पूछो, वैदिक मैथ कहाँ मिलेगा, तो लोग आपको जो है जर्मनी या लंदन की तरफ ऑक्सफोर्ड की तरफ भेज देंगे, मैथ हमारे इंडिया का है वैदिक मैथ, अदर्शना नहीं चलता है, लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा, भगवान कहते हैं इसी तरह यह ज्ञान जो है अदर्शन हो गया, हमको परंपरा फिर से चालू करनी है, इसलिए हमने ज्ञान तुमको दिया, तुम क्षत्रिय हो, फिर भगवान क्षत्रिय को दे रहे हैं, अर्जुन को दिया उन्होंने ज्ञान। अच्छा, तो यह टूटा कैसे? तो बोले राजा एक्सट्रोवर्ट हो गए, विषयी हो गए, ज्ञान को भूल गए, विषयों में रमण करने लगे, इसलिए चला गया। देखो दुर्योधन को ज्ञान लेने की चेष्टा नहीं थी, दुर्योधन भी उसी गुरु के पास में गया था मगर उसने ज्ञान नहीं लिया, और भगवान कहते हैं पांडव के बल ने दुर्योधन को फेस करने के लिए सारा समय निकाल दिया, पांडवों ने भी ज्ञान नहीं लिया। अच्छा, क्यों चला गया? देखो इसका कई रीजन महात्मा लोग बताते हैं, एक तो है लोग स्वार्थी हो गए, देना नहीं चाहते, अगर मेरे पास ज्ञान हो मैं स्वार्थी हो जाऊं मेरा काम हो गया, दूसरे का हो नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, स्वार्थी अगर हो जाए सेल्फिश हो जाए गया। लोग अगर इंस्पायर्ड ना हो कि हमें यह ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलने से ही मुक्ति होगी, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होगी, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होगी, अगर इंस्पायर्ड ना हो तब भी यह ज्ञान नहीं चलेगा। तीसरा वाला बड़ा गड़बड़ है, लोग समझकर अभ्यास नहीं करते, उसमें हम सब हैं, समझकर भी अभ्यास नहीं करते। कुछ ऐसे लोगों के पास में ज्ञान गया जो अनाधिकारी हैं, ज्ञान ले लिया मगर वो अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है तो बांटेगा नहीं, कुछ ऐसे लोगों के पास में ज्ञान चला गया जो अजितेंद्रिय हैं, जिनको अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, वो इंद्रियों में रमन में चले गए, फिर संसार में चले गए। इसलिए जो है ज्ञान लुप्त हो गया। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें ज्ञान दिया, इसकी प्रैक्टिस करो, तुम राज ऋषि बनो। ये भगवान की इच्छा है, अर्जुन से ये भगवान की चाहत है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम भी राज ऋषि बनो, मुक्त हो जाओ। इसके थ्रू भगवान जो है हम सबको कहते हैं कि ये ज्ञान लो और मुक्त हो जाओ।
गीता अर्जुन को ही मिला,
उसका मोह कट गया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उसने जाके उसने कहा है लास्ट में, मेरा मोह खत्म हो गया, माई रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इज ओवर नाउ। ओ
शांति 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 हरे।